पृष्ठ संख्या 107। आधे अधूरे की सावित्री की तरह वह घर के बोझ को स्वयं ढोती है। आर्थिक प्रश्न, बीमारी, घर का काम, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलने दिया कि कैसे करती हूँ, कहाँ से करती हूँ, कौन मुझे महीना भेजता रहा है, कौन मुझसे पूछने आता रहा है कि मम्मा कैसी करती हो तुम सब कुछ। लेकिन पापा की प्रतिक्रियाएं हमेशा कटुता से भरी हा के साथ भी होती है। रह रह कर मम्मा की थकान और कड़वाहट भी उभर आती है और अपनी ऊब और कुढ़न को किसी न किसी तरह व्यक्त करती रहती है। बस सीधे से उल्टा होना आता है इस आदमी को, उल्टे से सीधा होना नहीं आता। आजकल कुछ ज़्यादा ही सीढ़ी हो गई हो तुम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा यह हाँ हाँ करना। कहीं कहीं उसकी उत्तेजना, तीखापन और प्रतिक्रियाएं एकदम आधे अधूरे की सावित्री जैसी हैं, जैसे तुम तो जैसे आदमी नहीं हो तुम, या मुझसे अब नहीं होता पापा, अब नहीं होता मुझसे, वैसी ही वितृष्णा, वैसी ही हताशा। इस तरह दोनों के संवादों से यह सत्य बार बार प्रस्फुटित होता है कि क्या मानवीय संबंधों और मूल्यों के टूटने से ही हम शरीर और मन दोनों से रोगी नहीं हो गए हैं, और यह शारीरिक मानसिक बीमारी क्या केवल दवाइयों और टिकियों से जा सकती है? क्या नींद की टिकियां ही शांति और निश्चिंतता दे सकती है? रोज का सिरदर्द केवल एस्प्रीन से कैसे ठीक हो सकता है? इसीलिए पापा से पूछते ही कि घर में एस्प्रीन नहीं है, मम्मा चिढ़ जाती है और आवेश में कहती है सब कुछ है घर में, क्या नहीं है? पुराने चिथड़े, डिब्बियाँ, बोतलें, दवाइयाँ, अखबार, मैगजीन, चिट्ठियाँ, थोड़ी सी क्राकरी, यही सब है। सब कुछ पापा के लिए, उसकी अपनी अलग कोई जिंदगी नहीं। जबकि राकेश के हर पात्र में अपनी निजी संभावनाओं की, अपनी अलग जिंदगी की छटपटाहट अवश्य है। कहीं कहीं पापा की प्रतिक्रियाएं भी आधे अधूरे के पुरुष एक से एकदम मिलती हुई है, जैसे सबको तुम्हें, इसे आने जाने वालों को, सारी दुनिया को, जहां जहां जो कुछ बिगाड़ा है सब मैंने बिगाड़ा है अकेले ने। उत्तरदायित्व और व्यवस्था राकेश के लिए सर्वथा विरोध की चीजें रही हैं। जब जो हो जाता है किसी एक पर, उसका उत्तरदायित्व क्यों? यही उनके नाटकों के मूल में है। व्यक्ति अपने को उत्तरदायी न मानते हुए अपने अंतर्द्वंद को, स्वयं अपने को स्पष्ट करता हुआ, खोजता हुआ, निजी अस्तित्व के लिए छटपटाता हुआ दिखता है। स्वयं राकेश की तरह ही इतने बड़े ब्रह्मांड में सैकड़ों नक्षत्रों के बीच आदमी का अस्तित्व सिर्फ एक छोटे से बिंदु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, और उस बिंदु का इतने बड़े ब्रह्मांड के बीच कुछ भी अस्तित्व नहीं। आज की परिस्थितियों में यह खोज मानवीय निराशा और द्वंद्व को ही जन्म देती है। राकेश के नाटक भी स्थिति में कोई परिवर्तन हुए बिना समाप्त हो जाते हैं। अतीत और आज के अंधेरे के बीच जीता हुआ मानव ही उनके पात्र हैं। इस छोटे से नाटक का भी विशिष्ट पक्ष है। इसके छोटे, अधूरे, असंबद्ध और अस्फुट वाक्य, बोलचाल का लहजा और वाक्य विन्यास लिए सहज स्वाभाविक भाषा और नाटकीय स्थितियों का चुनाव संदर्भ 1, सारिका, मार्च 1973, पृष्ठ संख्या 9। पृष्ठ संख्या 108। संकेतों से खूब काम लिया गया है और हरकतों, क्रियाओं को पात्रों के आंतरिक तनाव, आक्रोश से जोड़ा गया है, इसीलिए वे हरकतें शब्दों में ज्यादा ध्वन्यात्मक और प्रभावशाली हैं। पापा का सूखी हंसी हंसना, प्यालियाँ हाथ से गिरकर टूटना, जमशेद का जूते की आवाज़ करते हुए अंदर आना, मामा द्वारा झटक कर ड्रेसिंग टेबल की एक-एक दराज खोलना, बंद करना, बिल्कुल सावित्री की तरह ये सब सांकेतिक हैं। श्रव्य बिंब भी नाटकीय वातावरण से जुड़े ही नहीं हैं, नाटकीय अर्थ भी देते हैं। पात्रों की मनः स्थिति को व्यक्ति भी करते हैं। पेड़ों की सरसराहट, समुद्र की लहरों का आरंभ में हल्का स्वर, नाटक के अंत में बढ़ता तेज स्वर, उस भयावह और द्वंद्वात्मक स्थिति को और अधिक प्रभावात्मक बनाता है। रंग निर्देश इन बीज नाटकों में भी अपने में पूरे हैं और बहुत सटीक हैं, बल्कि दृश्य बंध के निर्देश में भी आधे अधूरे जैसी आंतरिकता की मांग है। नाटक के पात्र और परिस्थितियों के एकदम अनुरूप पुराने ढंग के साज सामान से लदा एक बड़ा सा कमरा, टूटी हुई डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द अलग अलग तरह की तीन कुर्सियाँ, ड्रेसिंग टेबल पर दवाई की शीशियाँ, जूठी प्यालियाँ और हर तरह की चीज़ें, साथ साथ लगे तीनों ऊंचे कबर्ड इस तरह से बंद जैसे एक मुद्दत से उन्हें खोला ही न गया हो। जाहिर है कि इस पूरे दृश्य बंध के अंदर से झांकते आज के जीवन के बासीपन, निरर्थकता, अलगाव, बिखराव, रिक्तता और घुटन कूढ़न को समझने पहचानने की जरूरत है। मंच पर उन चीजों और उनके रखे जाने के क्रम और ढंग से ही नाटकीय अनुभव को, यथार्थ को नाटककार उभारना चाहता है। यह राकेश का मौलिक प्रयास रहा है। रंग निर्देशों और दृश्य बंध में इतनी सांकेतिकता और रंगमंच की जड़ता, स्थूलता को इतने सजीव सूक्ष्म अर्थ देने की कोशिश हिंदी नाटक क्षेत्र में नई बात है।